ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंद अध्याय 16 अध्याय का नाम है पवित्र पूजा विधि संपन्न। श्लोक संख्या 56, 57, 58 के तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 60वां श्लोक हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। 56 है, भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्ध कृपणादिषु विष्णोस्तं प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सह बन्धुभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, ये जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचक कार्येतन् कथाभिश्च पूजां भगवतोन्वहम्। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस उत्सव को मनुष्य प्रतिदिन नाच गाना बाजा स्तुति तथा मंत्रोच्चार एवं श्रीमद् भागवत के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य भगवान की पूजा करें। एतत् प्रयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभीतं मया ते समुदाहृतं। ये धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। ये सूचना मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिली थी और अब मैंने विस्तार के साथ तुमसे इसका वर्णन किया है। कौन कह रहे हैं? कश्यप ने कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अदिति माता से कह रहे हैं, उनकी पत्नी है अदिति, तो अपनी पत्नी अदिति से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मेरे पितामह ने बताइए, ये पूजा की विधि मेरे पितामह ने बताई है। किसके पितामह ने? कश्यप मुनि के पितामह। तो कश्यप मुनि के पिता कौन है? हाँ, मरीचि। कश्यप मुनि के पिता है मरीचि और मरीचि के पिता है ब्रह्मा जी। मरीचि मनसो भवत्, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का जन्म हुआ। माता कोई नहीं है, ब्रह्मा जी ने पत्नी से किसी संतान को जन्म नहीं दिया है, अपने शरीर और मन से ही जन्म दिया है। तो मरीचि ब्रह्मा जी जितने पुत्र हैं उनकी कोई माता नहीं है, ब्रह्मा जी की। तो पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे जो बताया वो मैंने तुम्हें बताया। तम चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोवृत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। अब मेरे पीछे बोलिए, अयम वै सर्वयज्ञाख्या सर्वव्रतम इति स्मृतम तपसारम इदं भद्रे दानं चे स्वर तर्पण। शब्दार्थ बोलिए, अयम यह वै निस्संदेह सर्वयज्ञ सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ आख्यः कहलाता है सर्वव्रतम सारे धार्मिक उत्सव इति इस प्रकार स्मृतम समझा जाकर तपः सारम सारी तपस्याओं का सार इदम यह भद्रे हे उत्तम स्त्री दानम दान के कार्य च तथा ईश्वर भगवान तर्पणम प्रसन्न करने की विधि। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, यह प्रयोग व्रत सर्व यज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की यही विधि है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को समझेंगे। कश्यप मुनि क्या करें, अयम है सर्व यज्ञाख्या, सर्व यज्ञ कहलाता है। ये जो पयोव्रत है 12 दिन का पयोव्रत, ये सर्व यज्ञ कहलाता है। सर्व यज्ञ का मतलब अगर इसको कर लिया तो आपने सब यज्ञ कर लिए, कोई भी यज्ञ बाकी नहीं रहा कि आपने नहीं किया, सर्व यज्ञ है। सर्वव्रतम इति स्मृतम, और इसको सर्वव्रत भी कहा जाता है। सर्वव्रत का मतलब है अगर आपने ये व्रत कर लिया तो सभी व्रत कर लिए, कोई व्रत नहीं छूटा। फिर तपासारम्भम भद्रे, ये तपस्या का सार है, तपस्या का सार है। अगर आपने ये कर लिया तो संपूर्ण तपस्या भी हो गई। और दानम, ये दान भी, इसमें सब प्रकार का दान भी हो गया, सब कुछ है। ईश्वर तर्पणम, और इसमें ईश्वर की प्रसन्नता भी है, ईश्वर की प्रसन्नता भी। तो सबसे बड़ी बात यही है, ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर को प्रसन्न किया जाए। तो ये जो है इसका महात्म्य है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य क्या लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की। हाँ, इसमें जो इस श्लोक का हिंदी पद्य अनुवाद है विष्णुप्रिया ने लिखा है, इसको मैं सुना रहा हूँ। हे कल्याणी, तुम जान लो ये व्रत हरि को तुष्ट करे, सर्वयज्ञ और सर्वव्रत इस कारण ही इसको कहे। समस्त तपस्याओं का सार इस यज्ञ को कहते हैं, इस यज्ञ को दान में भी प्रमुख ही कहते हैं। हिंदी की कविता है। तात्पर्य सुनिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। आराधनानां सर्वेषां विष्णो आराधनं परम, ये शिव जी का कथन पार्वती के प्रति है। भगवान विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है, और जिस तरह से भगवान विष्णु की इस पयोव्रत विधि से पूजा की जानी चाहिए उसका वर्णन पूरी तरह किया जा चुका है। कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा विष्णु की पूजा, और विष्णु की पूजा ये पयोव्रत की विधि से। तो कश्यप मुनि ने अदिति को 12 दिन की ये पूजा बताई, 12 दिन की पूजा बताई। क्यों 12 दिन की पूजा बताई, क्योंकि अदिति बहुत दुखी हैं, उनके जो पुत्र हैं देवता उनको स्वर्ग से असुरों ने बाहर निकाल दिया है, और वे बिना किसी शरण के इधर उधर भटक रहे हैं। तो कश्यप मुनि अदिति माता के दुख को उचित समझ करके कि ये इनका दुख दूर करना उचित है, कश्यप मुनि ने इनको पयोव्रत की विधि बताई, जो केवल 12 दिन में पूरी होती है। जबकि दिति ने जो है जब मांग की थी कश्यप मुनि से, तो उन्होंने पुंसमन व्रत की विधि बताई थी दिति को, जो 1 साल तक चलेगी। तो लंबा चक्कर डाला दिति की, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो अनुचित थी, उसकी मांग अनुचित थी, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की हत्या करे। अदिति की मांग उचित थी, मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस चाहिए, उनका स्थान असुर ने छीन लिया। तो दिति की मांग सही है, तो भावना सही है, चेतना सही है, तो 12 दिन का पयोव्रत बताया। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। उदिति की मांग अनुचित है तो उन्होंने एक साल का पंचमन व्रत बताया, और वो चूंकि ईर्ष्या पर आधारित है, उदिति की जो मांग है ईर्ष्या पर आधारित है, तो इसलिए पंचमन व्रत की विधि बताई। और उसमें भी एक नियम ये भी बना दिया कि किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करना। तो एक साल तक ईर्ष्या भी नहीं करना है, तो उसकी चेतना भी शुद्ध हो जाए जिस प्रकार से, तो कश्यप मुनि ने इस प्रकार का व्रत बताया। तो ये उनकी ये चालाकी थी, और भगवान से उन्होंने प्रार्थना भी की कि मैं अब बहुत बड़े पाप कर्म में फंस गया हूँ, क्योंकि मैं स्त्री के चक्कर में आ गया और स्त्री जो है मुझे अब तो नरक में ले जाए, वो ऐसा पुत्र मांग रही हूँ मुझसे, तो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने उनको बुद्धि दी कि ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इन नियमों का पालन करो एक साल तक। और फिर दीति का जो मन का ईर्ष्या भाव है वो इंद्र के प्रति दूर भी हो गया, क्योंकि वो नियम ही था इस प्रकार। तो बाद में जो दीति के पुत्र हुए जो मरुत, तो उन 49 पुत्र हुए, तो दीति ने फिर आज्ञा ये दी कि तुम इंद्र की सेवा में रहो। तो वो जो है फिर दैत्य नहीं बने, असुर नहीं बने, उनकी चेतना भी शुद्ध हुई और वो भी देवता बन गए। तो दैत्य के पुत्र होते हुए भी दैत्य नहीं कहलाते हैं, मरुदगण जो है 49 मनुष्यों में देवताओं में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर आगे प्रभु लिखते हैं, जीवन का चरम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। चार वर्णों तथा चार आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त हैं। विष्णु आराध्यते पुंसाम नान्य तत्व से कारणम, युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी विष्णु आराधना है। अब देखिए इस श्लोक से कोई व्यक्ति भ्रमित ना हो कि हम पयोव्रत करें, यदि प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये हमें सही रास्ते पर लाता है, तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी विष्णु आराधना है। तो इस समय युग के अनुसार हमें जो विधि बताई गई है कृष्ण भावना की, कृष्ण भावना आंदोलन के रूप में जो विधि बताई गई है, तो वो हमारे लिए है, ये युग के अनुसार है। आगे विष्णु आराधना की पयोव्रत विधि बहुत काल पूर्व कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति से स्वर्ग लोक में कही थी, और यही विधि आज भी धरालोक पर प्रमाणित है। विशिष्ट इस कलयुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्वीकृत विधि सैकड़ों तथा हजारों विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण जगन्नाथ बलराम सीताराम गौरनताई आदि के मंदिर खोलने की है। ऐसे विष्णु मंदिरों में नियत पूजा संपन्न करना तथा इस तरह है। भगवान की पूजा करना यहाँ पर संत पयोव्रत उत्सव संपन्न करने के समान है। तो आप चिंता मत करिए कि आपको भी अब पयोव्रत करना पड़ेगा, इसमें सब पूजा सब यज्ञ सब दान सब तपस्या सब कुछ है, तो पयोव्रत शुरू करते हैं हम लोग भी करना, तो ऐसा नहीं है। आगे ये पयोव्रत उत्सव शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक, लेकिन कौन सा महीना? फाल्गुन। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है, और इसमें 12 दिन तक केवल दूध पीना है, दूध के अलावा और कुछ नहीं, खाना ना पीना, केवल दूध पीना है, है ना। उसमें एकादशी भी आ जाती है, द्वादशी तक 12 दिन तक आप केवल दूध पिएं। उसमें विचार भी करना है कि फिर एकादशी का जो व्रत है अगर कोई करे तो फिर एकादशी का व्रत फिर अलग से कैसे होगा, क्योंकि वो एकादशी जैसा ही व्रत हो गया दूध पीना, तो प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक, तो उसमें एकादशी हो जाती है, इस प्रकार से एकादशी हो जाती है, क्योंकि आप प्रतिपदा से लेकर के और एकादशी तक भी अगर आप कर रहे हैं व्रत, अगर मान लीजिए आपने दसवीं को व्रत कर लिया भूल से, आपको पता नहीं कि एकादशी आगे है, आप आपने भूल से दसवीं को व्रत कर लिया या दसवीं तिथि मिली है और शुद्ध एकादशी नहीं है, आपने व्रत कर लिया, तो फिर अगले दिन आपको क्या करना चाहिए? अगले दिन भी फास्टिंग करना चाहिए। तो फिर वो जो फास्टिंग है वो अपने आप मतलब कैंसिल हो जाता है, उसका जो व्रत है वो अपने आप निष्फल हो जाता है, क्योंकि आपने पारण नहीं किया। अगर आपने पारण कर लिया, एकादशी को पारण कर लिया, तो दसवीं का जो व्रत है वो बड़ा दोष है। तो आपने दसवीं का व्रत किया एकादशी मानकर, दसवीं को अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो एकादशी को भी आप कुछ मत खाइए, तो वो जो है जो दसवीं तिथि का जो व्रत है वो निष्फल हो जाएगा और एकादशी का व्रत आगे चलेगा, ठीक है। और एकादशी का भी अगर मान लीजिए कि आपने व्रत किया और गलती से पारण के समय अगर आपने अन्न नहीं खाया, व्रत नहीं तोड़ा, तो एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? द्वादशी को भी व्रत करो, अन्न मत खाओ। तो इस तरह से वो जो है द्वादशी भी मतलब बराबर है, द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है, एकादशी ऋषियों की है, लेकिन दसवीं तिथि असुरों की। दसवीं तिथि को अगर आपने व्रत किया तो वो जो है बहुत दोष है, दसवीं तिथि को दोष नहीं। दसवीं तिथि को हम लोग कभी भी उपवास नहीं करते, जैसे विजयदशमी भगवान राम की विजय हुई थी, विजयदशमी उस दिन खूब खाते हैं, दशहरा मनाते हैं ना, खूब खाते हैं, उपवास नहीं करते कभी भी। दसवीं तिथि को कभी उपवास नहीं करना, अगर कर लिया भूल से उपवास तो फिर अगले दिन भी उपवास करो, तो वो एकादशी का फिर जो है आपको व्रत हो जाएगा, ठीक है ना। और एकादशी का जो है अगले दिन द्वादशी को अगर आप पारण करना भूल गए, समय निकल गया, तो फिर क्या करना है? नहीं तो वो फिर निष्फल हो जाएगा, वो भी निष्फल हो जाएगा, उसमें भी अपराध होता है। तो फिर द्वादशी का भी आप व्रत करें। तो इस तरह से ये जो पयोव्रत है इसमें एकादशी का भी जो है उपवास शामिल है। इसमें त्रयोदशी को जो है फिर भोजन खिलाया जाता है, खाया जाता है, तो द्वादशी का जो है उपवास किया जाता है, दूध का भोजन, दूध ही पिया जाता है। आगे प्रॉपर लिखते हैं, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विष्णु की पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समय सारणी के अनुसार की जाती है, जिसमें कीर्तन करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, भगवान विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने तथा इस भोजन को वैष्णवों तथा अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। ये प्रामाणिक गतिविधियाँ हैं और यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्य इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करें तो उन्हें पयोव्रत का पालन करने जैसा लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो है विधि है, कलयुग में ये विधि है, इसमें प्रसाद वितरण भी है और कीर्तन भी है और भगवान की पूजा भी है, भगवान को भोग अर्पित करना है, ये सब जो कार्य हैं ये प्रभुपाद कहते हैं 24 घंटे करना है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शुभ कार्यों यथा यज्ञ करना, दान देना, व्रत रखना, तपस्या करना आदि का सार निहित है। इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि का निष्ठापूर्वक तत्काल पालन करें। पूर्वोक्त विधि जो प्रभुपाद नियम बनाए हैं तो इन कहीं आपको पालन करना है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है, बना बनाया तो रखा हुआ है आपके पास सब कुछ। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्यम मनसोरसे में रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन नृत्य गीत और वादित्र संगीत इन सब की जो विधियाँ दी हैं इनमें जो है आप आनंदित होते हैं। रोमांच कंपन अश्रु की जो है अगर अनुभूति होती है तो आपका जीवन सफल है। निस्संदेह सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। यज्ञ संकीर्तन पायर यजंति ही सुमेधसा, कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि इस विधि का ठीक से पालन करें। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है विष्णु को प्रसन्न करना। तो भगवान जो है प्रसन्न हो, और अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान अपने उपस्थिति आपको उपस्थिति का अनुभव कराएंगे। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएंगे। वो तो प्रत्यक्ष दर्शन दें, जैसे अतिथि महारानी को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है ना। तो अगर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं तो भी कई प्रकार के हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं और संकेत मिलते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। ये जो है आपको अपनी तरफ से कुछ कल्पना करने की जरूरत नहीं है, भगवान की ओर से ये जो है संकेत मिलते हैं, इसे बहुत संकेत मिलते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनसे कि हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हैं। तो केवल हमें विधि का पालन करना है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो जाप में भी प्रभुपाद ने यही बात बताई है कि आपकी भावना क्या होना चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। और इसके साथ साथ जो भावना है वो ये अपने आप, हाँ, ये भावना भी मानी जाती है कि मुझसे अपराध ना हो, मैं अपराध ना हूँ, मेरे से अपराध ना हो। तो ये जो भावना है ये इसके अंदर शामिल है कि आप जितनी हो सके आपके द्वारा सेवा हो, लेकिन उल्टा कार्य ना हो, सेवा को उल्टा अपराध है। अपराध अगर आपने किया है तो सेवा के से भी उल्टा हो गया, जीरो से नीचे चले गए। तो अपराध ना हो हमसे और सेवा हो, जितनी अधिक से अधिक हो तो सेवा हो, इन अपराध है किसी प्रकार ना हो। तो दोनों प्रकार की जो भावना है ये हमारे अंदर होना चाहिए, हमें बचना चाहिए अपराधों से। हम 10 नाम अपराध जो बोलते हैं तो ये इसलिए बोलना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 10 अपराधों को जब हम भोगते हैं तो अपने अंदर भावना आती है कि मैं बचूं अपराधों से। और अगर अपराधों से बचते हैं तो नाम में पूरी शक्ति है। अगर आप अपराधों से बचते हैं तो नाम नाम अकार्य बोधा में जो सर्वशक्ति है, तो नाम में ही संपूर्ण शक्ति है। तो आपको फल मिलता है, नाम का फल मिलता है। लेकिन अगर अपराध करते हैं तो फिर बाधा पड़ती है, फल प्राप्ति में बाधा पड़ती है। तो ये जो आंदोलन है, जो श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन दिया है या फैलाया है, आंदोलन तो श्री चैतन्य ने दिया है, संकीर्तन के पितर श्री चैतन्य और नित्यानंद ही एकमात्र पिता है, संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र पिता पितरों द्विवचन है। तो दो व्यक्ति जो है पिता है, एकमात्र पिता संकीर्तन के पितर श्री चैतन्य नित्यानंद एकमात्र पिता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, इस आंदोलन को फैलाया। जन्म देने वाले श्री चैतन्य है और श्रील प्रभुपाद फैलाने वाले, तो उन्होंने फैलाया इस आंदोलन को। और प्रभुपाद जोर देते हैं, केवल इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें उसी प्रकार से इसको चलाना है, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं है। जो कुछ भी हमें दिया जाता है उसको उसी प्रकार से हमें पालन करना है, उसी प्रकार से। तो वो जो है अगर हम इसको उसी प्रकार से दोहराते हैं, उसी प्रकार से चलाते हैं जैसे चलाया प्रभुपाद ने, अपनी तरफ से कोई जोड़ते नहीं हैं, तो वो जो है आपको फल प्रदान करेगा, आपको भगवान की जो कृपा है वो आपको मिलेगी, प्राप्त होगी। तो केवल यही हमारी योग्यता है कि हम इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ें नहीं। प्रभुपाद भी यही बोलते थे कि मैंने श्री चैतन्य का संदेश दिया तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैंने तो दोहराया। अगर कुछ योग्यता है तो यही कि मैंने कुछ अपनी तरफ से जोड़ा नहीं, कुछ मिक्स नहीं किया। तो इतने से ही ये परिणाम मिल रहा है, पूरी दुनिया में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और पाप कर्म छोड़ रहे हैं। मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, ये सब छोड़ रहे हैं। तो ये सब जो परिणाम है केवल इसी कारण से मिल रहा है कि मैं कुछ जोड़ नहीं रहा। जब प्रभुपाद विदेशों में थे तो उनका जीवन बहुत संकट में था और उनके जो शिष्य थे वो बड़े चिंतित थे कि अगर प्रभुपाद शरीर छोड़ देंगे तो हम लोगों के जीवन का क्या होगा, हम लोगों की भक्ति का क्या होगा। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा था कि मैं हम लोग आपके गुरु भाइयों से संपर्क करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है अगर उसमें उन्होंने कुछ भी थोड़ा सा भी अगर बदल दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग मेरे गुरु भाइयों के पास जाओगे, हाँ मैंने जो कुछ भी बात बताई उसमें थोड़ा सा भी अगर उन्होंने बदल दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये जो संदेश है, श्री चैतन्य का संदेश है, ये आंदोलन है, ये बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध आंदोलन है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो चिंता है वो यही है कि इसकी शुद्धि को जो है हम उसी प्रकार से बनाए रखें, कुछ भी अपनी तरफ से जोड़े नहीं, घटाए नहीं। हमें कुछ अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन कुछ भी बिना विचार किए हमें उसी प्रकार से आंदोलन को जो है स्वीकार करना है, नियमों का पालन करना है और इस तरह से हम इसका जो वांछित फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। माता अदिति की जो चिंता थी कि उनके पुत्रों को स्वर्ग का जो स्थान है कैसे प्राप्त हो, तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। माता अदिति को भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और अदिति माता जो है भगवान की स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं और भगवान उनसे बातचीत करते हैं, सब विचार करते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो ऐसी है, इसमें कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, भगवान सब विचार करते हैं और फिर उनके पुत्र बनते हैं। वामनदेव का जन्म होता है अदिति के गर्भ से। तो हमारी भी जो इच्छा है, हमारी भी कुछ चिंता है, आवश्यकताएं हैं, तो भगवान उन पर भी विचार करेंगे, भगवान उन पर भी जो उचित है वो भगवान करेंगे और हमें बताएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। अगर हमारी इच्छा है कि भगवान प्रसन्न हो तो प्रसन्नता ही हो आपको दिखाएंगे, वो ऐसे संकेत प्रदान करेंगे कि आपको दिखाई देंगे कि भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत से संकेत मिलते हैं, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिनसे कि बहुत हर्ष और विस्मय होता है, ऐसी घटनाएं हो रही। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है। तो आप लोग जो है इन नियमों का पालन करिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? मैं प्रश्न हाँ जी, कश्यप मुनि का आश्रम कहाँ पर था? यहाँ तो महाप्रभु पर बता रहे हैं कि स्वर्ग में, कश्यप मुनि जो है स्वर्ग में है। स्वर्ग से सब देवताओं को निकाल दिया गया है और असुरों ने अधिकार कर लिया है, लेकिन कश्यप मुनि रहते हैं फिर भी स्वर्ग में। असुर लोग जो है कश्यप मुनि की ही संतान है, तो कश्यप मुनि को तो नहीं निकाल रहे हैं, कश्यप और अदिति को तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन देवताओं को निकाल दिया उन्होंने। अदिति माता ने स्वर्ग में ही व्रत किया, स्वर्ग में ही व्रत किया अदिति। एक सेकंड, और किसी का प्रश्न है? हाँ जी,
mentioned Srila Prabhupada's instruction that if you were to depart, should the devotees go to his god brothers for guidance?
महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभुजी आपने आपने बताया प्रवचन में कि जब प्रभुपाद के शिष्यों को ये चिंता थी कि जब प्रभुपाद यहाँ से चले जाएंगे तो उन्हें क्या उनके गुरु भाइयों के पास जाना चाहिए.
So after Srila Prabhupada's physical departure, that's what exactly happened. It's hard to say how many disciples of Prabhupada went to one of Srila Prabhupada's prominent god brothers.
तो ऐसा ही हुआ कि प्रभुपाद के जाने के बाद में प्रभुपाद के कुछ शिष्य प्रभुपाद के गुरु भाइयों के पास चले गए. ये कहना यह संख्या बताना संभव नहीं है लेकिन काफी भक्त चले गए.
Somewhere between 600, maybe as many as 800 devotees went to one of Prabhupada's god brothers for guidance. Of course, there was a lot of big confusion after Prabhupada's departure.
लगभग 600 से 800 भक्त प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के एक गुरु भाई के पास चले गए. और
But that particular acharya, his way of presenting sadhana is you could almost say radically different than ISKCON. So everything changed. Those followers that went with him, whole morning program different, you see. Some prayers same, but no time for japa, for example, only bhajans. No japa time, only bhajans.
उससे काफी confusion हो गया और क्योंकि उनकी साधना गौड़ीय मठ की साधना भी बहुत अलग थी. जैसा कि उनका सिर्फ भजन पे ही ज्यादा वो लोग प्रयास करते थे भजन का, न कि जप के लिए अलग से कोई समय नहीं था. तो इस तरह से बहुत सारे confusion हो रहे थे.
When I asked why there was no japa period in their mat, the devotees replied, that is your own responsibility. In other words, if you're going to chant 1 o'clock, 2 o'clock in the afternoon, that's fine, but it's not our responsibility to set a program for you to chant japa. So it's such a huge difference. And other things also, so many things different.
Maharaj ne un bhaktos se poocha ki aisa kyun hai ki aapke mat mein alag se samay kyun nahi hai jap ke liye. तो उन्होंने कहा जब करना आपका अपना उत्तरदायित्व है, इसके लिए आपको अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा. आप 1 बजे करें, 2 बजे करें, दोपहर में जब आप कर सकें.
Worse than this, the fanatic devotees were declaring that this god brother Prabhupada was the true successor to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which means a slap in the face to Srila Prabhupada. Certainly, they boldly declared that. This god brother was a true successor. In other words, indirectly they were saying, no, here is Swami Maharaj, he's not the true successor. They can't say like that, but they indirectly, they said, by saying that the god brother was a true successor to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in this way, actually, with all respects, offering my dandavat pranams to so many of these Vaishnavas, but that was a big uproar.
उनमें से कुछ भक्त यह भी बता रहे थे कि जो गौड़ीय मठ के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो शिष्य हैं वही उनके सच्चे प्रतिनिधि हैं. तो यह एक तरह से यह प्रभुपाद की स्थिति को नीचा करने की तरह था. तो इसलिए यह सही नहीं था, यह अपराध था प्रभुपाद के.
So point is they changed a lot more than one word. Prabhupada said they changed even one word. A sixth guru changes even one word and it's well. Oh, they changed way more than one word. The whole sadhana was changed. Everything changed, you know. And the devotees, you know, following the, you know, charming acharya, so they didn't think twice about it.
जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु शिक्षा गुरु अगर एक शब्द भी बदल दें तो बहुत बदलाव आ जाता है. तो यहाँ तो उन्होंने पूरी साधना ही बदल दी थी. तो इस तरह से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया.
So the point is that Srila Prabhupada's prediction came true, certainly his warning came true, full on.
तो इससे पता चलता है कि जो प्रभुपाद ने जो चेतावनी दी थी वो सत्य साबित हुई.
धन्यवाद. तो महाराज जो बता रहे हैं आप लोगों ने सुना बहुत आवश्यक है कि प्रभुपाद ने जैसे कहा कि सोलह माला आपको करना है, तो संस्थापक आचार्य हैं ये जो सोलह माला का जो जप है ये आपको करना है। किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद मैं भगवान की पूजा में और जो है भगवान की सेवा में बहुत लगा हूँ और मुझे सोलह माला जप करने का समय नहीं मिलता है, मुझे केवल चार घंटे का समय मिलता है जिसमें मैं विश्राम करता हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम दो घंटे के लिए विश्राम करो और दो घंटे में सोलह माला पूरी करो। तो प्रभुपाद इतने कठोर थे कि आपको सोलह माला अपनी पूरी करनी है, किसी भी तरह से हर हालत में वो करना है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कुछ कहा है, मोह कलील करके कोई श्लोक है, उसमें कहते हैं कि इस दलदल में मत फंसो, तुम इस दलदल में फंस जाओगे तो तुम भगवान का भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो उस श्लोक में आपका कोई भगवत दर्शन में कोई लेख में आया था कुछ तो उस प्रकार द्वे तदवे वशिष्ठा
यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यति करिष्यति तदा गन्तास निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुदर्शचा। तो मोह रूपी दलदल, तो अर्जुन भी मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं, अर्जुन की जो बुद्धि है वो मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है। और मोह क्या है कि हमारे जो है संबंधी हैं, हमारे ये पिता हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं, इस प्रकार के जो संबंध जो बनाए हुए हैं अर्जुन ने, तो जो दलदल है ये बड़ा खतरनाक होता है। दलदल में आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना और नीचे जाते हैं, तो अर्जुन जो है मोह के रूपी दलदल में फंसे, और हमारी भी यही स्थिति है, मोह रूपी दलदल में फंसे हैं। तो जब हम निकल जाते हैं तथा घंटा से निर्वेदम श्रोतव्य से सुदर्शता, तब आपको जो निर्वेद प्राप्त होगा, विरक्ति प्राप्त होगी जो सुनने लायक है और जो सुनी गई है। तो भगवान ये अर्जुन को बताते हैं, तो अपने उपदेश के द्वारा अर्जुन को मोह के दलदल से निकालते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति दलदल फंस जाता है तो अपने प्रयास से नहीं निकल सकता, जो दूसरा व्यक्ति है जो दलदल से बाहर है तो वो जब खींचता है तभी निकल सकता है, आप अपने प्रयास से निकल नहीं सकते हैं। तो भगवान ही जो है हमें मोह रूपी दलदल से निकाल सकते हैं, या भगवान के जो उपदेश हैं और जो गुरु परंपरा के द्वारा जो हमें भगवान का उपदेश प्राप्त होता है जिसमें कुछ बदला नहीं जाता है उससे हम निकल सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी,
थैंक यू प्रोजी। इसमें एक चीज़ आया था कि पर्यवर यज्ञ विधि जो है बाकी सभी यज्ञों से बहुत ऊपर है, ऐसे भगवद गीता भगवान बताते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें तो वो सबसे बड़ा यज्ञ है, तो ऐसा दोनों चीज़ों को कैसे एक साथ समझ सकते हैं?
हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, जब भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, तो जप यज्ञ हमें समझना चाहिए कि जप यज्ञ में बहुत सुविधा है, इसमें आपको बहुत से जो व्यवस्था हैं वो नहीं करनी पड़ती हैं, जो दूसरे यज्ञ हैं दूसरे प्रकार के यज्ञ हैं, हमें हवन कुंड अलग बनाना है, फिर बहुत सी यज्ञ की सामग्रियां हैं वो एकत्र करनी है, वो भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, संविदा है और घी है तो घी भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से मंत्र हैं जिनका कि पाठ हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, योग्य ब्राह्मण चाहिए मंत्र पाठ करने के लिए। लेकिन जो जप यज्ञ है इसमें आपको कुछ हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, आपके जो कान हैं ये स्वयं ही हवन कुंड बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो मंत्र पाठ करने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो आप ही ये मंत्र भी पाठ कर रहे हैं, हवन सामग्री भी आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं है, ये हरे कृष्ण ये सोलह नाम है ये हवन सामग्री भी है, तो आप ही हवन सामग्री डाल रहे हैं, हवन कुंड में डाल रहे हैं, हवन कुंड भी आपके पास है और इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं और हर जगह कर सकते हैं और हर व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए भगवान करें यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, कि जप यज्ञ में जो सुविधा है और जो अधिकार है हर समय हर जगह और हर व्यक्ति को जो अधिकार है वो दूसरे यज्ञों में हर समय नहीं आप कर सकते, वो यज्ञ हर जगह नहीं कर सकते और हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें बहुत बंधन है, इन जप यज्ञ में किसी प्रकार का बंधन नहीं, तो इस कारण से भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है, यज्ञ यज्ञ करते हुए कितना पैसा खर्चा होगा, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगना, निःशुल्क बिना पैसे के आप यज्ञ करते हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञ में जप यज्ञ। ठीक है, हाँ जी,
धन्यवाद प्रभु। पीछे एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है तो द्वादशी के दिन कोई अन्न ना खा के केवल दूध पीना चाहिए। 25वें श्लोक के तात्पर्य,
अच्छा 25वें श्लोक के तात्पर्य में नहीं, पिछला श्लोक मतलब 60 के पहले,
हाँ 25
60 के पहले तो तात्पर्य ही नहीं ना,
25 श्लोक।
अच्छा इसमें वैदिक प्रणाली के अनुसार प्रसाद वितरण किया जाता है। नहीं, इसमें क्या एकादशी बात है, ये तो 45
As we generally perform devotional service on Ekadashi day by not eating grains, it is generally recommended that on Dwadashi one not consume anything but milk.
ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एकादशी को आपने फल लिए या सब्जी ली, शाकाहार फलाहार अगर आपने लिया है, तो फिर उसको अन्न से तो तोड़ना पड़ेगा, जो द्वादशी के दिन आपको अन्न से ऊपर तोड़ना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वो विचार करना पड़ेगा कि प्रभुपाद जो है अगर दूध पीने के लिए कह रहे हैं तो मतलब कैसी स्थिति में दूध पीने के लिए कह रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि द्वादशी के दिन पारण में तो हमें अन्न लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपने दूध नहीं पिया है, आपने निर्जल किया है अगर एकादशी, तो द्वादशी के दिन आप दूध पी करके भी पारण कर सकते हैं। अगर आपने दूध पिया है एकादशी के दिन तो फिर आप पारण फल से करना पड़ेगा, अगर आपने फल भी खाया है तो एकादशी को पारण आप साग से कर सकते हैं, या साग भी खाया है तो फिर आपको अन्न से पारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो विचार करना पड़ेगा प्रभुपाद किस लिए कह रहे हैं द्वादशी को, क्योंकि अक्सर हम लोग द्वादशी भी एकादशी को द्वादशी भी मानते हैं, क्योंकि जो द्वादशी तिथि अगर मिल जाए एकादशी में तो वो और ज़्यादा पवित्र होती है, द्वादशी तिथि मिल जाए तो कई बार हम द्वादशी का व्रत बोलते हैं, द्वादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत की जगह हम द्वादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो विचार करना पड़ेगा। और कोई आपका प्रश्न, वामन देव अच्छा वामन देव जब बलि के यज्ञ में आए तो नर्मदा नदी के तट पर बताया गया है, नर्मदा नदी के तट पर आए हैं। अब ये स्थान स्वर्ग में हो सकता है या पृथ्वी में, ये विचार करना पड़ेगा, ये स्वर्ग में है या पृथ्वी में, जहाँ भी है। वैसे लगता तो ये है कि पृथ्वी में था, क्योंकि वामन देव ने सबसे पहला अपना जो पैर है उससे पृथ्वी को नापा, अपने एक पैर से पृथ्वी को नापा है, और फिर जो है दूसरे चरण से आकाश को नापा, और तीसरा जो चरण है वो स्वर्ग में रखा, तो इसे समझ आता है कि पृथ्वी में थे बलि महाराज। लेकिन वो स्थान हम पता नहीं लगा सकते, हम जो है निश्चित रूप से नहीं कह सकते कहाँ पर है वो स्थान, क्योंकि पृथ्वी के भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, भारतवर्ष के भी बहुत से स्थान हैं जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और जो स्थानों का वर्णन है वो दिखाई पड़ रहे हैं। पृथ्वी में 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, वो नहीं दिखाई पड़ रहा, एक खारे पानी का समुद्र दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे जो दूसरे समुद्र हैं छारे छू गन्ने के रस का समुद्र है, छारे छुसुरा शराब का समुद्र है, घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है, ये हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, तो लेकिन शास्त्रों में जो बताई गई पृथ्वी वो पृथ्वी उसी प्रकार की है, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि कहाँ पर है पृथ्वी पृथ्वी नहीं देख पा रहे इस समय, लेकिन सभी शास्त्रों में बताया गया पृथ्वी में सात द्वीप हैं और सात समुद्र हैं, सुमेरु पर्वत है जो 1,00,000 योजन ऊंचा है। 1,00,000 योजन ऊंचा का मतलब 12,00,000 किलोमीटर ऊंचा सोने का पर्वत हमें नहीं देखा, ठीक है ना। तो इसलिए जो बताई गई शास्त्रों में बातें हैं हमें उसी को सुनना है, उसी को दोहराना है। हो सकता है कि हम बाकी उन चीज़ों को सिद्ध ना कर पाए और हमारी इंद्रिय की जो शक्ति है उसके द्वारा हम इन बातों को ना समझ पाए, लेकिन हम बदलते हैं किसी बात, ठीक है।
गौड़ीय मठ के भक्त जो है वो दसवीं तिथि का विचार नहीं करते, जैसे एकादशी में दसवीं तिथि होती है तो
दसवीं तिथि का विचार स्मार्त लोग नहीं करते हैं। स्मार्तों की एकादशी होती है तो वो पहले होती है, वैष्णवों की एकादशी बाद में होती है। जो स्मार्त लोग होते हैं वो दसवीं जो वेला एकादशी है उसको करते हैं, लेकिन इसमें बहुत दोष है।
कई भक्त जो जुड़े हुए हैं गौड़ीय मठ से वो दसवीं तिथि मिक्स होती है वही उसी दिन एकादशी करते हैं, या तो उनको पता नहीं है।
वो उनके जो कैलेंडर हैं तो वो हर शहर के अनुसार नहीं बनते हैं, हमारे जो कैलेंडर हैं हर शहर के अनुसार बनते हैं। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में हो सकता है कि बम्बई में अगले दिन एकादशी हो, दिल्ली में जिस दिन एकादशी है, तो जो हमारे कैलेंडर हैं वैष्णव कैलेंडर हैं वो ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा सूक्ष्म विचार किया गया। तो हम कहते हैं भाई दिल्ली के हिसाब से आज एकादशी, तो आप एकादशी करो, आप यात्रा मत करो। यदि आप यात्रा करेंगे और अगले दिन मान लीजिए वहाँ एकादशी है तो कैसे करेंगे? इससे अच्छा यही कि आप एकादशी के दिन यात्रा मत करिए, क्योंकि जिस शहर में आप एकादशी कर रहे हैं और जिस दिन एकादशी है उसका पालन करके फिर आप यात्रा करो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी,
उसके बाद फास्ट को लेंगे वो एकादशी का लेगा या द्वादशी का?
अगर आपने एकादशी का व्रत किया है और अगले दिन अगर आपने व्रत नहीं तोड़ा तो आप द्वादशी का फिर व्रत करिए, तो वो जो है आपका जो है वो द्वादशी का व्रत माना जाएगा, तो वो एकादशी से कम नहीं है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधिका रमण जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलराम गौर नताई की जय हो।